ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रास लीला का प्रारंभ। श्री शुकवाच। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर मह मह महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब के सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। तदोराज ककुभ करे मुखम प्राच्याविलंपन्नरुणेन संतमयेह सचर्षणीनां बदगाच्छुतो मृजन् प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली, केसर, मलदी जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत, संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंडमंडलम् रमाननाभम नवकुंकुमारुणम् वनम चतत्कोमलगोभिरंजितम् जगौ कलम वाम दिशाम मनोहरम। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उन वन को देख देख कर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्योऽन्यमलक्षितोद्यमः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान का वह वंशी वादन, भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यों तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनको उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। उन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर, जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। दुहन तो भी यजू का दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य सय्याव मनुद्वास्या पराययुः। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। परिवेशयन्त्यस्तद्धृत्वा पायन्त्यशिशुन्पयः शुश्रूषन्त्य पतिं काश्चेन अश्नन्त्योपास्य भोजनम्। जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। लिम्पन्त प्रविजन्तोऽन्याम् अञ्जन्त काश्चलोचरे व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ी। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहितात्मानो न नवरतन्त मोहिता। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमय प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। अंतर्गृहगता कश्चिन् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मिलित लोचना। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने दुस्सह प्रेत विरह तीव्र ताप धूता सुभा ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निवृत्त्याचीर्ण मंगला। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्म सद्य प्रक्षिण बंधना। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया चाहे किसी भी भाव से किया हो वे स्वयं परमात्मा ही तो थे, इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजवाच कृष्णं विदो परम कांतं न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्ताशां गुणधियां कथम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? श्री शुकुवाच उक्तम पुरस्तादेतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः द्विसन्नपि ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? नृणाम ऋषे नृणाम श्रेय सार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य अनंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवान में हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है। अरे, उनके संकल्प मात्र से भौहों के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। तादृष्ट्वान्तिकमायातां भगवान ब्रजयोषितः अवदत् वदताम श्रेष्ठो वाच पेशे विमोहयन्। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री भगवान वाच स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयम कच्चेन ब्रूतागमन कारणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना, कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई?
रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम देह स्थेयम श्रीभिषु मध्यमा।
सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं, अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए।
मातर पितर पुत्र भ्रातर पतयश्च वह विचिन्वन्ति शपस्यन्तो मा क्रुद्धं बंधु साध्वसम्।
तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो।
दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नीललीलैज तरुपल्लव शोभितम।
तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन को की शोभा को देख लिया। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया।
तद्यात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतिं सतिहि क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पायत दूषत।
अब देह देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो, जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौवें के बछड़े रो रहे हैं, रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौवें दुहो।
अथवा मदस्नेहात् भवत्यो यन्त्रताशयाः आगतायुपपन्नं प्रियन्ते मयि जन्तवः।
अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारी योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं।
भरतो शुश्रूषणम श्रेणाम परो धर्मोश माययाम तब बंधूनाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषणम।
कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करे और संतान का पालन करे।
दुस्सेलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवाम पति स्त्रीभिर् न हातव्यो लोके सुभिर् पातकी।
जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला भाग्यहीन वृद्ध मूर्ख रोगी या निर्धन ही क्यों न हो।
अस्वर्गम अयस्यम च फल्गुकृच्छ्रम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रियाः।
कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है, इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयस होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है।
श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मय भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्।
गोपियों, मेरे लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती, इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ।
श्री शुक वाच इति विप्रियमाकर्ण गोप्यो गोविंद भाषितम् विषन्ना भग्न संकल्पा चिंताम मापुर दुरत्ययाम।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई, वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। कृत्वा मुखान्यवशुत स्वसनेन सुस्यन् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कमाली तस्तुर्मृजन्त उर्दुःखभरास्मतूष्णिम्। उनके बिंबा फल अर्थात पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की और लटका लिए, वे पैर के नखों से धरती कुदेरने लगी, नेत्रों से दुख के आंसू बह बह कर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। प्रेष्टम प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामाः नेत्रे विमृज्य रुदतोपहते स्म किंचित् संभगद्गद गिरो ब्रुवतानुरक्ता। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग परम प्रेम था। अब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ, आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रूंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोप्योचुहु मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संतज्य सर्वविषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं, इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है, फिर भी तुम अपने ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। यत्पत्यपत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्मयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपं देशपदे त्वयि से प्रेष्टो भवात्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो, तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद अर्थात चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो, तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रीतम हो। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलास्म आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैकिं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आशामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो, अनित्य एवं दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन है, परमेश्वर इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो कमलनयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। चित्तम सुखेन भवता अपहृतम गृहेषु यन्निर्विसत्योतकरावपगृह्य कृत्ये
पादौ पदम न चलत तव पाद मूलाद जाम कथम ब्रज मथो करवाम किं वा।
मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे हैं, फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहां जाएं भी तो करें क्या?
सिंचांगन स्वदभ्रामृत पूर के हासावलोक कलगेत जहेच्छयाग्नि नो चेत वयम विरह जाग्न्यु प्रयोक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदविं सकेते।
प्राणवल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रस धारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम, हम सच कहते हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी।
यर्हम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणम क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अप्राक्ष तत्प्रभृति नान्य समक्षमंग सा तुम तया विरमिता बत पारया बह।
प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्रादिकों की सेवा तो दूर रही।
श्री यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्याम लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम यस्यास्वभिक्षण कृते नसुर प्रयास तद्वद्वयम् च तव पादरज प्रपन्ना।
हमारे स्वामी, जिन लक्ष्मी जी की सेवा तो दूर रही, जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा क्या करती है। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं।
तन्न प्रसीद ब्रजनार्दन ते ग्रिमूलम प्राप्ता ब्रसिज्य वसती त्वदुपासनाशाह त्वसुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काव तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम।
भगवन, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ, हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रीतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है, हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो।
विक्षालकावृत मुखम तव कुंडल स्त्री गंडस्थलाधर सुधम भसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड युगम विलोक्य वक्ष श्रियकरमणम च भवामदास्य।
प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनके सुधा सुधा को भी जलाने वाली है, तुम्हारी यह नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार है, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य का एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं।
काष्ठंगते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्च चरितान् चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन्।
प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बुंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है एवं जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष और हरिन भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए।
व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो भिजातो देवो यथाधि पुरुष सुर लोक गोप्ता तन्नो निधे ही कर पंकज मार्द बंधो तप्त स्तने सुच सिरस्तु चकिंकरीणाम।
हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो, और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम बड़ी कृपा है। प्रीतम, हम भी बड़ी दुखनी हैं, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है, तुम अपने इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर उन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो।
श्री सुकुवाच इति विक्लमितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामो त्यरीरमत।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। अब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया, और यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की।
ताभि समेताभिरुदार चेष्टितः प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखेभिरच्युतः उदार हास द्विज कुंद दीधिते व्यरोचतैनांक इवोडभिवृत।
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंडल कुंदकली के समान जान पड़ते थे, उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया, वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो।
उपगेयमान उद्गायन वनिता सदयूथपः मालां बिभ्रत वैजयन्तीं व्यचरन्मण्डलयन्वनम् नद्या पुलीदमावेश्य गोपिभिर्हिमवालुकं रेमे तत्तरलानन्दकौ कुमुदां मोदवायुना।
गोपियों के सतत युथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलीन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलीन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की।
बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नेवेतनालंभन भन्नर्मन खाग्रपाते खेल्यावलोक हसिते ब्रज सुंदरी राम उत्तम भयंद्रतिपतिम रमयान चकार।
हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी जांघ निभी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नख छत करना, विनोदपूर्ण चितवन में देखना और मुस्काना, इस क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे।
एवं भगवत कृष्ण लब्धमाना महात्मनः आत्मानंदोभ्यधिकं भुवि।
उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है, वे कुछ मानवती हो गई।
तासाम ततसो भगमदं विक्षमानं त्यकेशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत।
जब भगवान ने देखा कि उन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहां उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे भगवतो रास क्रीड़ा वर्णनम नामैकत्रिंशोऽध्यायः।